पृष्ठ 193 8 श्रव्य काव्य कहानी कथा साहित्य कहानी वर्तमान कहानी का जन्म। आजकल की हिंदी कहानियाँ जिसको गल्प आख्यायिका लघु कथा भी कहते हैं भारत की पुरानी कहानियों की ही संतति हैं, किंतु विदेशी संस्कार लेकर आए हैं। खद्दर के सूट की भांति उनकी सामग्री प्रायः देशी रहती है, किंतु काट छाट अधिकांश में विलायती ढंग का होता है। नए प्रकार की कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं में हुआ है। मासिक पत्रिकाएं दैनिक जैसे क्षणजीवी और पुस्तकों जैसे अपेक्षाकृत स्थायी साहित्य के बीच की वस्तु है होती है। ये मास प्रतिमास नई सामग्री उपस्थित कर पाठकों के मनोरंजन तथा ज्ञान वृद्धि का साधन बनती है और गृह कक्ष में, रेल के सफर में, कभी कभी स्कूल कॉलेजों के खाली घंटों में अथवा अध्यापक की आँख बचाकर भरे घंटों में भी कम से कम पीछे के बेंचों पर भी मन बहलाव करने वाले वार्तालाप कुशल मित्र का काम देती हैं। आजकल रेडियो ने इस सेवा का बहुत सा भार अपने ऊपर ले लिया है। हिंदी में इस प्रकार के मासिक साहित्य का चलन 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। कुछ तो नए युग में बढ़ती हुई जीवन की प्रतिद्वंदिताओं से उत्पन्न होने वाले समयाभाव और उतावलेपन के कारण और कुछ इन मासिक पत्रिकाओं की भस्मक रोग किसी तृप्तिहीन शुदा के निवारणार्थ ऐसे स्वतः पूर्ण मनोरंजक साहित्य की आवश्यकता बढ़ी तो फालतू समय को भार स्वरूप होने से बचाए और साथ ही कौतूहल और जिज्ञासा को बहुत देर तक त्रिशंकु गति में न रखे। आधुनिक कहानी की विशेषताएं। आधुनिक कहानियों और प्राचीन कहानियों में कई बातों में अंतर है। प्राचीन कहानियां दो प्रकार की हैं, एक मौखिक और दूसरी साहित्यिक। मौखिक कहानियां प्रायः रात में कही जाती थी क्योंकि दिन में कहने से मामा के गैल भूल जाने की आशंका रहती थी। वास्तव में दिन काम का समय समझा जाता था और वे सीधी सच्ची आडंबर रहित भाषा में कही जाती थी। उनमें पृष्ठ 194 पात्रों के व्यक्तित्व का पूर्ण अभाव सा रहता था। एक राजा था, एक रानी, उसके नाम ग्राम से कोई मतलब नहीं। यदि राजाओं के नाम भी रहते तो थे तो भोज, विक्रम, उदयन या ब्रह्मदत्त आदि राजाओं के, जो एक प्रकार से कहानियों के लोक प्रसिद्ध और सार्वजनिक आलम्बन थे। कालिदास ने अपने मेघदूत में ऐसे ग्राम वृद्धों का उल्लेख किया है जो कि उदयन की कथाओं में निपुण थे। उदयन कथा कोविदि ग्राम वृद्धान पूर्व मेघ 32। प्राचीन कहानियों में कहानी दर कहानियों का गोरख धंधा भी रहता था। इनमें मनुष्य और जानवर समान रीति से भाग लेते थे। साहित्यिक कहानियों में पात्र कुछ पते ठिकाने के होते थे। जैसे कर्पूर द्वीप में पद्मकेली नाम का तालाब था, वहाँ पद्मगर्भ नाम का राजहंस रहता था। जानवरों तक के नाम होते थे, जैसे चित्रग्रीव कबूतर, चित्रवर्ण मयूर या हिरण्यक नाम का चूहा। साहित्यिक कहानियों में कुछ ने अलंकृत और समासपूर्ण शैली को अपनाया और कुछ सरल भाषा में लिखे गए। उनमें भी मनुष्य और जानवर समान भाव से भाग लेते थे और प्रायः कहानी दर कहानी की भूल भुलैया रहती थी। आधुनिक कहानियाँ प्रायः मानव केंद्रित होती हैं और उनमें राजा, मंत्री और साहूकार के बेटे बेटियों की अपेक्षा साधारण श्रेणी के लोग, जिनका हमें निकटतम परिचय होता है, अधिक रहते हैं। यद्यपि पहले जमाने की कहानी भी लोकहितार्थ लिखे जाने के कारण मानव केंद्रित ही थी, तथापि उसकी मानवेतर सृष्टि को पर्याप्त मात्रा में स्थान मिलता था। आधुनिक कहानी में पहले की अपेक्षा कौतूहल की मात्रा कम हो गई है और नित्य नया रूप धारण करने वाली नवीनता तथा बुद्धिवाद को अधिक स्थान मिलता जा रहा है। यह बात नहीं है कि आजकल की कहानी में मानवेतर सृष्टि का समावेश पात्र रूप में से न होता हो, किंतु वे पात्र बुद्धिवाद से शासित रहते हैं। आधुनिक काल में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि इस युग में मनुष्य अपनी शक्तियों पर अधिक भरोसा रखता है। यदि कोई नगर में प्रवेश करते ही इसलिए राजा बन गया कि पहले राजा का हुक्म था कि सवेरा होते ही जिस पर दृष्टि पड़े वह गद्दी का अधिकारी बना दिया जाए, तो इसमें मनुष्य का क्या गौरव बढ़ता है। हम पुरुषार्थ पर गर्व कर सकते हैं, वह अपनी चीज है। भाग्य भी कर्मों का ही फल है, लेकिन वह इस जन्म के कर्मों का नहीं। बासी रोटी में चाहे खुदा का साझा न हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु उसमें ताजी और अपने हाथ से बनाई हुई का मजा नहीं आता। पहली कहानी का रस चमत्कार में था, आज की कहानी का रस चरित्र चित्रण, भावों के उतार चढ़ाव और विचारों के विश्लेषण अथवा समस्याओं के उद्घाटन और उनके हल के सुझाव में है। हृदयेश जी या प्रसाद जी को छोड़कर आधुनिक कहानी के में कादम्बरी या दश कुमार चरित किसी अलंकार प्रियता भी नहीं है, किंतु सादा होते हुए भी वे अपना गौरव रखती हैं। उनकी सादगी दरिद्र की कलाहीन सादगी पृष्ठ 195 नहीं है। अब कहानी में केवल विवरण की अपेक्षा कथोपकथन को भी अधिक आश्रय मिलता जा रहा है। बिल्कुल आधुनिकतम कहानी में घटना चक्र का महत्व घटता जा रहा है। घटनाएं भाव और विचारों को आश्रय देने के लिए अर्गला का सा काम देती हैं और कहीं कहीं वे एक बिंदु को खोटी मात्र रह जाती हैं। रूप और परिभाषा। अब हम कहानी के रूप और परिभाषा का विचार करने के लिए कुछ कुछ तैयार हो गए हैं। परिभाषा के श्रोता तो दुर्बल नहीं है, किंतु उसकी कठिनाई के कारण वक्ता अवश्य दुर्लभ है। जो वस्तु दिन दिन रूप बदलती हुई विकास को प्राप्त हो रही है, उसकी परिभाषा देना उतना ही कठिन है जितना कि बिहारी की नायिका की तस्वीर खींचना, जो चतुर चित्रों को भी क्रूर बना देता है। इसलिए कुछ अनुभवी आलोचकों ने हैरान होकर संक्षिप्तता को उसका एकमात्र लक्षण माना है। आंग्ल देश के प्रसिद्ध उपन्यासकार H.G. वेल्स ने कहानी को वह कथा कहा है जो एक घंटे में पढ़ी जा सके। फंक्शन दैट कैन बी रीड इन एन आवर। हास्य की भांति संक्षिप्तता ही इसकी भी जान बतलाई गई है। फिर भी कहानी में कुछ अपनी विशेषता रहती है। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। यदि किसी प्रकार का साहित्य इस कथन को अधिक से अधिक सार्थकता प्रदान करता है तो वह कथा साहित्य है, जिसमें उपन्यास और कहानी दोनों शामिल है। कहानी उपन्यास की भांति कही जाती है और भूत से संबंध रखती है। नाटक में भूत को वर्तमान में घटता हुआ दिखाने का लक्ष्य रहता है। उपन्यास और कहानी में भूत की बात घटे हुए रूप में दिखाते हैं। भविष्य की पृष्ठभूमि में भी कहानी बैठाई जा सकती है, किंतु उसे लेखक पहले अपनी कल्पना में घटा हुआ देख लेता है। उपन्यास जीवन का पूरा चित्र है तो वह एक पक्ष की झांकी मात्र है। इसलिए उस अंग्रेजी लेखकों ने जीवन का स्नैपशॉट या जीवन का टुकड़ा कहा है, किंतु वह टुकड़ा ऐसा होता है कि छिपकली की पूंछ की भांति बिल्कुल सफाई के साथ अलग हो जाता है। वह स्वतःपूर्ण होता है, उसमें तंतु बाहर से लाकर नहीं जोड़ने पड़ते हैं और न संदर्भ देकर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। उसमें मुक्तक काव्य का सा एकांगी पर पूरा चित्र रहता है। कहानी छोटी होते हुए भी किसी बड़े तथ्य का उद्घाटन करती है और जितना ही वह तथ्य व्यापक होता है उतनी ही वह कहानी उत्तम होती है। कहानी अपने छोटे मुंह से बड़ी बात कहती है। तथ्य में केवल विचार ही शामिल नहीं है, वरन भाव भी सम्मिलित है। पाश्चात्य देशों में अमरीकी लेखक एडगर एलन पो सन 1809 से 1849 आधुनिक कहानी के चाहे जन्मदाता न हो किंतु जन्मदाताओं में एक माने जाते हैं। प्रश्न 196। उनकी कहानी की परिभाषा इस प्रकार है। ए शॉर्ट स्टोरी इज नैरेटिव शॉर्ट एंड नॉट टू बी रीड इन ए सिंगल सिटिंग, रिटन टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर, इंक्लूडिंग ऑल दैट डोज नॉट फॉरवर्ड दैट इम्प्रेशन कंप्लीट एंड फाइनल इन इटसेल्फ, द क्वेस्ट ऑफ लिटरेचर बाई J.T. शिपली, पृष्ठ 299 से उद्धृत। अर्थात छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव के उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। उसमें ऐसी सब बातों का बहिष्कार कर दिया जाता है जो उस प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक न हो, वह स्वतः पूर्ण होती है। सर यू वॉलपोल की भी परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कहानी कहानी होनी चाहिए, अर्थात उसमें घटित होने वाली वस्तुओं का लेखा जोखा होना चाहिए। वह घटना और आकस्मिकता से पूर्ण हो, उसमें क्षिप्र गति के साथ अप्रत्याशित विकास हो जो कौतूहल द्वारा चरम बिंदु और संतोषजनक अंत तक ले जाए। ए शॉर्ट स्टोरी शुड बी ए स्टोरी ए रिकॉर्ड ऑफ थिंग फुल ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट स्विफ्ट मूवमेंट अनएक्सेप्टेड डेवलपमेंट डेडिंग थॉट सस्पेंस टू ए सेटिस्फाइंग डिनोटमेंट। राय बहादुर डॉक्टर श्याम सुंदर जी ने अपनी परिभाषा में नाटकीय ढंग पर अधिक बल दिया है, किंतु निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को उन्होंने भी आवश्यक माना है। उनकी परिभाषा इस प्रकार है, आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। साहित्यालोचन ऊपर के विवेचन के आधार पर छोटी कहानी या आख्यायिका की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। छोटी कहानी एक स्वतःपूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक परंतु कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो। कहानी और इतिहास भूतकाल से संबंध रखने के कारण कहानी और उपन्यास इतिहास के समान धर्मी है। कहानी और इतिहास शब्द भी समान अर्थ वाले हैं। इतिहास का भी अर्थ है उसने कहा था, किंतु इतिहास और कहानी या उपन्यास के दृष्टिकोण में अंतर है। इस बात को हम उपन्यास के संबंध में स्पष्ट कर चुके हैं। कहानी और उपन्यास कहानी अपने पुराने रूप में उपन्यास की अग्रजा है और पृष्ठ 197 नए रूप में उसकी अनुजा वृत्त या कथा साहित्य की वंशजा होने के कारण और उपन्यास दोनों में ही कई बातों की समानता है। दोनों ही विधाएं कलात्मक रूप से मानव जीवन पर प्रकाश डालती है। इतना होते हुए भी दोनों की अपनी विशेषताएं हैं जो कि एक दूसरे से पृथक करती हैं। दोनों में केवल आकार का ही भेद नहीं, हम यह नहीं कह सकते कि कहानी छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास बड़ी कहानी है। यह कहना ऐसा ही असंगत होगा जैसे चौपाई होने की समानता के आधार पर मेढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहना। दोनों के शारीरिक संस्कार और संगठन में अंतर है। बैल चारों पैरों पर समान बल देकर चलता है तो मेढक उछल उछल कर रास्ता तय करता है। इस प्रकार कहानीकार भी बहुत सी जमीन छोड़ता हुआ छलांग मारकर चलता है। दोनों के गतिक्रम में भेद है। कहानी को हमने जीवन की एक झलक या झांकी कहा है। झांकी प्रायः क्षणिक परंतु प्रभावपूर्ण होती है। कहानीकार केवल एक ही दृश्य पर सारा आलोक केंद्रित कर उसके प्रभाव को तीव्रतम बना देता है। उपन्यासकार पूर्ण चिड़िया ही नहीं वरन और पास बैठी हुई दूसरी चिड़ियाओं को तथा जहाँ तक उसकी निगाह दौड़ सके पूरे दृश्य को सावधानी के साथ अवलोकन करता है। किंतु कहानीकार धनुर्विद्या विशारद वीर अर्जुन की भांति अपने निशाने को अचूक बनाने के लिए केवल आंख को और ज्यादा से ज्यादा सिर को जिसमें आंख अवस्थित है लक्ष्य कर तीर छोड़ता है। कहानीकार अपने पाठक को अंतिम संवेदना तक शीघ्रातिशीघ्र ले जाता है और एक साथ पर्दा उठाकर सजी सजाई झांकी की मोहक एवं आकर्षक छटा से मनोमुग्ध कर देता है। वह बीच बीच में रहस्योद्घाटन नहीं करता, एक दो संकेत चाहे कर दे किंतु अंतिम क्षण तक बात को पेट में पचाए रखता है। अंतिम संवेदना से ही बीच के संकेत भी सार्थक हो जाते हैं। उपन्यास के पाठक को जहाँ ग्रंथकार के विश्वास पात्र होने का गौरव प्राप्त है वहाँ कहानी के पाठक को अधिक प्रभावपूर्ण दृश्य देखने और केंद्रीभूत आनंद के प्राप्त करने का संतोष है। कहानी की एक तथ्यता ही उसका जीवन रस है और वही उसे उपन्यास से पृथक करता है। शिल्प विधान की तुलना इसी मौलिक भेद के कारण दोनों प्रकार की रचनाओं के शिल्प विधान में भी अंतर पड़ जाता है। वातावरण का विस्तार जीवन के अनेक रूपता प्रासंगिक कथाओं के तारतम्य के कारण कथा प्रवाह का बहुशाखा होकर अंत की ओर अग्रसर होना पात्रों का बाहुल्य आदि बातें जो उपन्यास में श्लाघ्य या कम से कम शम्य समझी जाती है कहानी में अग्रह्य हो जाती है। कहानी में चरित्र के विकास के लिए अधिक गुंजाइश नहीं रहती, उसमें गड़े गड़ाए चरित्र की एक केंद्रित आलोक में झलक दिखाई जाती है जिससे पूरे चरित्र का भी कुछ आभास मिल जाता है। वास्तव में वह चित्रण नहीं होता वरन क्षणिक प्रकाश होता है। कहानी के किसी पात्र में यदि चरित्र परिवर्तन भी होता है तो प्रायः पृष्ठ 198 एक ही प्रभावपूर्ण घटना से ही हो जाता है। उनमें सनार की 100 चोटों की जरूरत नहीं, वरन लोहार की एक गहरी चोट ही काम कर जाती है। मुंशी प्रेमचंद जी की आत्माराम शंखनाद, जिसमें बेफिक्र मनमौजी गुमान पैसे के अभाववश अपने बच्चे को खिलौना खरीदने की असमर्थता और निराशा से प्रभावित हो अपना रवैया बदल देता है और बच्चे का रोना ही उसके लिए कर्तव्य का शंखनाद बन जाता है। कौशिक जी की ताई और श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार लिखित डाकू शीर्षक कहानियां हिंदी कहानी साहित्य में चरित्र परिवर्तन के अच्छे उदाहरण हैं, किंतु ये सब है एक ही चोट के प्रभाव। कहानी में कथानक चरित्र और वातावरण वह चाहे बाह्य हो या आंतरिक होते सब हैं, किंतु मुख्यतः एक को ही मिल सकती है, शेष दो बहुत गौड़ हो जाते हैं। उपन्यास में मुख्यतः चाहे एक की ही रहे किंतु तीनों को उचित विस्तार मिल जाता है। उपन्यास की सफलता सभी तत्वों के यथोचित समावेश में है। कहानी की शैली अपनी संक्षिप्तता के कारण अधिक व्यंजना प्रधान होती है, उसमें गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। व्यंजना जो काव्य का प्राण है उपन्यास की अपेक्षा कहानी में अधिक मात्रा में वर्तमान रहती है, इसलिए वह काव्य के अधिक निकट आ जाती है। इसके अतिरिक्त उपन्यास का काव्य तो बिखरा सा रहता है किंतु कहानी का गुण उसकी एक घेयता के कारण अंतिम बिंदु में स्थित रहता है। कहानी में व्यंजना की मात्रा पाठकों के मानसिक धरातल के अनुकूल घटती बढ़ती रहती है। जो कहानियां निम्न श्रेणी के लोगों के लिए अथवा पढ़कर सुनाए जाने के उद्देश्य से लिखी जाती हैं, उनमें घटना की प्रधानता रहती है, किंतु जो अपेक्षाकृत सुपठित समाज के लिए शांतिपूर्वक अध्ययन कक्ष के या शयनगार के भीतर पढ़े जाने के लिए लिखी जाती है उनमें व्यंजनों और विचार की मात्रा अधिक रहती है। कहानी और प्रगीत काव्य। कहानी में प्रगीत काव्य का संगीत तो नहीं होता, किंतु वह अपनी एक भेदता और वैयक्तिक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण उसके अधिक निकट आ जाती है। कहानी का अंतिम बिंदु या तथ्य कहानीकार के मन में पहले से झलक जाते हैं। वह प्रायः किसी घटना विशेष को देखकर स्फुरित होता है और कभी कभी वैसे भी बिजली की भांति चमक जाता है। यदि उसका स्फुरण आंतरिक हुआ तो वह उसको मूर्त रूप में देने के लिए घटना का कल्पना से आविष्कार कर लेता है। कहानीकार का लक्ष्य तो उस तथ्य को ही प्रकाश में लाना रहता है, फिर भी वह भाव को निरालंब नहीं रखता है, वरन उसकी पुष्टि में घटना चक्र का आवश्यक मात्रा में समावेश कर देता है। कहानी और गद्य काव्य। संगीत के अभाव के कारण कहानी गद्य काव्य के पृष्ठ 199 अधिक निकट है, किंतु गद्य काव्य के साथ भी उसका यही भेद है जो प्रगीत काव्य के साथ है। गद्य की एक विधा होने के कारण तो कहानी भी गद्य काव्य है, किंतु काव्य के विशेष अर्थ में जैसे राय कृष्णदास या वियोगी हरि के गद्य काव्य व गद्य काव्य के निकट होती हुई भी उससे भिन्न है, उसमें घटना की अपेक्षा रहती है गद्य काव्य में नहीं। गद्य काव्य में घटनाओं का अभाव सा रहता है और यदि घटनाएं रहती हैं तो उनको महत्व न देकर उनसे जागृत हृदय उद्गार को ही मुख्यता दी जाती है। कहानी में उद्गारों के साथ घटनाओं को भी समान महत्व का अधिकार रहता है। कहानी और रेखाचित्र। रेखाचित्र या स्केच कहानी के बहुत निकट होते हुए भी उससे भिन्न है। रेखाचित्र में एक ही वस्तु या पात्र का चित्रांकन रहता है और वह एक प्रकार से स्थायी होता है। कहानी में गत्यात्मकता रहती है, स्केच में वर्णन का प्राधान्य रहता है। कहानी में वर्णन के साथ कुछ कथन अर्थात प्रबंधात्मक कथन भी रहता है। हिंदी में श्री प्रकाश चंद्र गुप्त ने बहुत सुंदर रेखाचित्र लिखे हैं। उनमें जिन वस्तुओं या व्यक्तियों जैसे लेटर बॉक्स, पेट्रोल टैंक या लाला जी का चित्र खींचा जाता है उनमें उस वस्तु के स्थायी संबंध को ही उपस्थित किया जाता है। कहानी में एक विशेष गति रहती है, उसमें काल क्रम का विकास रहता है अर्थात वह चलता हुआ दिखाई देता है। रेखा चित्र में इस बात का अभाव सा रहता है। कहानी में जितना काल क्रम घटता रह जाता है उतना ही वह रेखा चित्र के निकट आ जाती है। कहानी के तत्व। कथा साहित्य के अंतर्गत होने के कारण वस्तु चरित्र चित्रण कथोपकथन वातावरण उद्देश्य और शैली के ये 6 तत्व तो उपन्यास की भांति ही होते हैं, किंतु रचना के कारण उनके प्रयोग में थोड़ा अंतर होता है। शरीर के अवयवों की भांति ये तत्व भी अन्योन्याश्रित हैं। कथा वस्तु। कहानी की कथा वस्तु अत्यंत संक्षिप्त होती है। उसमें शहर के रहने वाले अल्पसंख्यक परिवार के कक्ष की भांति प्रसंगागत मेहमानों के लिए समाई नहीं। कहानीकार अपने पाठक को अंत तक पहुंचाने में इधर उधर घूमने या चिलम तमाकू पीने का अवकाश नहीं देता। घटनाओं के संबंध में बिना प्रयोजन अंदर आने की इजाजत नहीं, कहानीकार का मूल मंत्र कहा गया है। इसी के साथ घटनाओं का परस्पर संबंध होना भी आवश्यक है। उनका तारतम्य ऐसा हो कि वे एक कौतूहल की श्रृंखला में बड़ी हुई आगे बढ़ती चली जाए और ऐसी भी न मालूम हो कि वे जबरदस्ती ढकेल दी गई हैं। कहानी का कथानक आरंभ होकर प्रायः किसी न किसी प्रकार के संघर्ष द्वारा क्रमशः उत्थान को प्राप्त होता हुआ चरम या तीव्रतम स्थिति को पहुंचता पृष्ठ 200 है। वहां पर कौतूहल क्रमशः अपनी चरम सीमा को पहुंच जाता है और कौतूहल का चमत्कारिक और कुछ कुछ अप्रत्याशित ढंग से अंत हो जाता है। वहां पर आकर ऊंट एक निश्चित करवट में करवट से बैठ जाता है। इसके पश्चात कहानी का परिणाम या अंत आता है जिसमें पूरे तथ्य का उद्घाटन हो जाता है। चरम या तीव्रतम स्थिति परिणाम को अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। यह कहानी के लिए अनिवार्य नहीं किंतु इसके द्वारा कहानी को अधिक उत्कर्ष प्राप्त होता है। किन्हीं किन्हीं कहानियों में यह चरम बिंदु बड़ा स्पष्ट और नुकीला होता है और कहीं किन्हीं में कुछ फैला सा रहता है। प्रसाद जी की मधुआ नाम की कहानी में यह कुछ फैला सा दिखाई देता है। कहानी के आरंभ में अंत का थोड़ा सा संकेत रहना वांछनीय रहता है जिससे अंत अप्रत्याशित होते हुए भी नितांत आकस्मिक न लगे। यदि भी कहानी की गति उपन्यास किसी वक्र नहीं होती तथापि एक दो घुसाव उनकी रोचकता को बढ़ा देते हैं। जीवन का प्रवाह भी संघर्षमय है, वह भी भुजंगम गति से चलता है। कहानी उससे भिन्न नहीं हो सकती। कहानी में कई घटनाएं हो सकती है और होती हैं, किंतु उनमें एकता और अनवृत्ति आवश्यक होनी चाहिए। चरम सीमा का संबंध प्रायः मूल घटना से होता है। यद्यपि आज का मानव पुरुषार्थ को महत्व देता है, फिर भी जीवन में ऐसे अवसर आ जाते हैं जबकि कहना पड़ता है कि मेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और। कहानीकार को भी ऐसा अवसर उपस्थित करना पड़ता है। इसी को विधि का विधान कहते हैं। केवल करुणोत्पादन के लिए विधि के विधान का आश्रय लेना अवांछनीय है, किंतु यदि पुरुषार्थ की सीमा बतलाने के लिए ऐसा किया जाए तो कोई हानि नहीं। इस प्रकार कहानी का कथानक बहुत अंश में कलाकार के उद्देश्य और जीवन मीमांसा पर निर्भर रहता है।